बूढ़ी माँ ने तारापरी से कहा कि उसे तिलस्मी रोटी पाने के लिए 300 आत्माओं को मुक्त करना होगा, जो सदियों से उसका इंतजार कर रही थीं। तारापरी चौंक गई और बोली, क्या ये पिछला जन्म है? कितनी बार उसके सामने पिछले जन्म का जिक्र आ चुका है, और अब बूढ़ी माँ तारापरी को राधा और अमन को मोहन कह रही थीं। इसलिए तारापरी ने ये निश्चय किया कि आज वो बूढ़ी माँ से राधा और मोहन का रहस्य जान लेगी। ये सोचकर वो अमन के साथ पिछले जन्म के रहस्य को जानने के लिए चली गई। बूढ़ी माँ ने तारापरी और अमन को उनका जन्म नहीं सुनाया, बल्कि दिखाया। बूढ़ी माँ की मदद से तारापरी और अमन सदियों पूर्व चले गए। वहाँ उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गांव देखा, जहाँ कुछ घुड़सवार आए और गांव की औरतों को अगवा करके ले गए। जैसे ही तीसरे गांव में वे घुड़सवार औरतों को उठाने के लिए आए, एक नकाबपोश ने उन घुड़सवारों पर हमला कर दिया और कई घुड़सवार मार गिराए गए। कई डर के मारे भाग गए। अमन और तारापरी ये देखने के लिए बेचैन थे कि आखिर कौन है ये नकाबपोश जिसने इन सबको बचाया था। उसे देखना तो बनता है। ये सोचकर अमन और तारापरी दोनों उस नकाबपोश के सामने जा खड़े हुए। चूंकि वे दोनों आत्मा बनकर उस सदी में आए थे, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। तारापरी ये देखकर बेहद हैरान हुई कि वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी, जो हूबहू एकदम तारापरी जैसी थी। तभी उन आदमियों की भीड़ में से एक आदमी उस लड़की का नाम लेते हुए बोला, ये तो तपस्वी महाराज की बेटी राधा है। राधा, ये नाम हर कोई लेकर चिल्लाने लगा। चारों ओर राधा राधा ही गूंज रहा था। तारापरी हैरानी से बुरा हाल थी। राधा हूबहू तारापरी जैसी थी। वही लंबे घने रेशमी बाल और वही बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, तीखे नैन नक्श। उस वक्त राधा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अमन भी राधा को बेहद करीब से बेख्याली से देख रहा था, क्योंकि राधा जैसी ही हूबहू लड़की उसके बिल्कुल पास में खड़ी हुई थी। तभी अचानक राधा राधा चिल्ला रहे लोग शांत हो गए और सभी लोगों में एक हलचल सी शुरू हो गई। सब एक और रास्ता छोड़ने लगे। लोगों में शोरगुल होने लगा। अमन ध्यान से सुनने लगा कि ये लोग आखिर दबी जुबान में क्या कह रहे हैं। तब उनमें से एक आदमी बोला, रास्ता छोड़ो, तपस्वी महाराज आ रहे हैं। तभी अमन और तारापरी ने सामने की ओर देखा तो एक हल्की पीले रंग की धोती और एक काले अंगोछे में लिपटे हुए एक बड़े ही तेजस्वी पुरुष वहां उस ओर तेजी से आ रहे थे। उनके पीछे उनके कुछ चेले चपाटे भी आ रहे थे। तपस्वी महाराज सीधे राधा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने एक गहरी नज़र राधा पर डाली। राधा ने अपने पिता महाराज को देखते ही अपना सर झुका लिया। राधा की ओर एक बार और देखकर तपस्वी महाराज सब लोगों की बातें सुनने लगे। तपस्वी महाराज बोले, आज राधा बिटिया ने गांव की औरतों को बचा लिया। बहुत बहादुर है राधा बिटिया। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो राधा जैसी निडर और बहादुर लड़की आपकी बेटी है। ऐसे ही राधा की कितनी ही तारीफ भरी बातें तपस्वी महाराज के कानों में पड़ रही थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। सब अपने अपने तरीके से बढ़ चढ़कर राधा की तारीफ कर रहे थे, और राधा अपने पिताजी के आ जाने से बिल्कुल शांत सर झुकाकर खड़ी हुई थी। तब तपस्वी महाराज ने अपना हाथ खड़ा किया, जिसे देखकर बोलते हुए सभी लोग एकदम से खामोश हो गए। तब तपस्वी महाराज बोले, आप सब के सब अपने अपने घर जाइए और सतर्क रहिए, क्योंकि औरतों पर मंडरा रहा खतरा अभी टला नहीं है। ये सुनकर काफी बड़ा तबका परेशान हो उठा और सभी तपस्वी को प्रणाम करके अपनी अपनी बीवी बहन को लेकर वहां से अपने अपने घरों की ओर चले गए। अब वहां केवल 10-12 हट्टे कट्टे नौजवान बचे थे। उन्हें देखकर तपस्वी ने कहा, तुम सब गांव के बाहर पहरा दोगे, और जब भी तुम्हें किसी घोड़े की चाप या कोई भी किसी तरह का खतरा महसूस होगा तो तुम में से एक तुरंत आकर गांव में जानकारी देगा, और तुम में से एक पहाड़ी वाले रास्ते पर नजर रखेगा। जैसे ही पहाड़ी वाले रास्ते पर कोई हलचल दिखेगी तो तुम सीधा आकर मुझे बताओगे। अब तुम सब भी जा सकते हो। करीब करीब वे सब लड़के भी वहां से चले गए, लेकिन एक लड़का जिसने अपने चेहरे पर एक रुमाल लपेट रखा था वो वहां खड़ा रह गया। तब तपस्वी ने उसे देखा और बोले, तुझे क्या अलग से कहना होगा जाने के लिए? तब वो लड़का बोला, लेकिन गुरुजी, आपने तो मुझे राधा जी के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तब तपस्वी उसकी ओर देखकर बोले, ओ तो तुम हो? हाँ, हमने तुम्हें राधा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन तुम अपना काम बहुत खूबी से नहीं कर पाए, और देखो ये लड़की कितनी बड़ी नादानी कर बैठी है। ये उस जालिम राजा के सैनिकों की नजरों में आ गई है। तब राधा थोड़ी धीमी आवाज में बोली, पर पिताजी, हमें किसी ने भी नहीं देखा है, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। तब तपस्वी महाराज राधा के सामने जा खड़े हुए और बोले, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। अब तुम अपने इस अंगरक्षक के साथ सीधे घर जाओ, और तब देख हम ये पता करते हैं कि उन घुड़सवारों में से कितने लोग यहाँ से बचकर गए हैं। और उसके बाद वो उस अंगरक्षक की ओर देखते हुए बोले, और तुम, अगर आज के बाद तूने इसे एक मिनट के लिए भी अकेला छोड़ा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? उस अंगरक्षक ने तपस्वी महाराज के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। जल्दी ही तपस्वी महाराज भी अपने सभी चेलों के साथ वहां से चले गए, और गांव वाले इस तरह से गायब हो गए मानो यहां इस गांव में कोई रहता ही ना हो। राधा और उसके अंगरक्षक के अलावा अब वहां कोई नहीं था। तारापरी और अमन दोनों बिल्कुल राधा के पास ही खड़े हुए थे और हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। तभी अमन ने देखा वो तपस्वी चलता हुआ राधा के पास पहुंच गया था और राधा से बोला, एक दिन तुम मुझे मरवाकर ही मानोगी, आज तो बाल बाल बचे हैं हम लोग। जब मैंने तुम्हें कहा था रुको, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे साथ, तो तुम्हें अकेले उन घुड़सवारों से लड़ने आने की क्या जरूरत थी? क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? तब राधा उसे देखकर बोली, मुझे पता था अगर मैं कहीं फंस गई तो तुम मुझे बचाने जरूर आओगे, और ये 10-12 लोग थे, इतने ज्यादा भी लोग नहीं थे जिनसे तुम्हारी राधा ना लड़ सके मेरे प्यारे मोहन। ऐसा कहकर राधा ने मोहन के मुंह पर बंधा कपड़ा हटा दिया और अमन तो मोहन को देखकर मानो सांसें लेना ही भूल गया था। अमन एकदम शौक था ये देखकर कि मोहन एकदम अमन जैसा था। तारापरी का भी बुरा हाल था, वो कभी अमन को देख रही थी तो कभी मोहन को। जैसा राधा को देखकर अमन का बुरा हाल था, वैसा ही मोहन को देखकर तारापरी का बुरा हाल था। तब मोहन ने राधा से कहा, अब चलें वरना तुम्हारे पिताजी आज पक्का मुझे तुम्हारे अंगरक्षक की नौकरी से बाहर निकाल फेंकेंगे। राधा मोहन की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और वो उसके पीछे चल पड़ी। तारापरी और अमन हैरानी से उन दोनों को जाता हुआ देख रहे थे और कुछ ही देर बाद अमन और तारापरी ने अपने आप को एक खंडहर सी जगह पर पाया। तारापरी और अमन एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि अगर वे इस जगह पर आए हैं तो जरूर इसके पीछे कुछ कारण होगा। वे दोनों उस खंडहर में थोड़ा सा आगे बढ़े और तभी उन्हें कुछ परछाई सी नजर आने लगी और वे दोनों उस ओर गए। उन्होंने देखा राधा और मोहन उस खंडहर नुमा घर में एक दूसरे की बाहों में थे और देखते ही देखते मोहन ने राधा का गला लेकर नाच शुरू कर दिया और वो और राधा अपने दोनों हाथ उसके बालों में घुमाने लगी।
तारापरी और अमन का ये सब देखकर गला सूखने लगा, क्योंकि जो दो लोग उनके सामने एक दूसरे को प्यार कर रहे थे वे उन दोनों के ही हमशक्ल थे, या बूढ़ी माँ के शब्दों में कहें तो पिछले जन्म में वे दोनों ही वही थे। तभी अमन ने देखा कि राधा ने मोहन को नीचे की ओर धकेल दिया और वो खुद उसके ऊपर आ गई और उसने मोहन के ऊपर बैठकर उसे ताबड़तोड़ किस करना शुरू कर दिया और उन दोनों के होठ एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गए और देखते ही देखते मोहन ने नीचे से अपनी स्पीड बढ़ा दी और जब राधा मोहन के होठ को चूस रही थी तब मोहन ने उसकी कमर और कमर के निचले हिस्से पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। तारापरी ये सब नहीं देख पा रही थी और वो उन दोनों के सामने से अपनी पीठ करके खड़ी हो गई और अमन भी उन्हें नहीं देख पाया और वो भी तारापरी जैसे पीठ करके खड़ा हो गया। अब वे दोनों उन्हें देख तो नहीं रहे थे लेकिन उन दोनों की मधोश भरी आवाज उनके कानों में सुनाई दे रही थी। राधा मोहन से कह रही थी, नहीं नहीं ये नहीं करो, ये मुझे पसंद नहीं है, तुम क्यों नहीं मानते हो? और तभी मोहन की आवाज़ आई, मुझे तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से से मोहब्बत है, मैं तुम्हें हर जगह से प्यार कर सकता हूँ। ऐसा कहकर मोहन राधा में पूरी तरह से समा गया और जब वे दोनों बुरी तरह से एक दूसरे को प्यार करके थक चुके थे तब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए बातें करने लगे। तब राधा ने मोहन से कहा, मोहन आखिर कब तक हम लोग इस तरह से चोरी चोरी मिलते रहेंगे? जब से तुम पिताजी के पास विद्या सीखने के लिए आए थे तब से लेकर आज तक हम दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा काम देखकर ही पिताजी ने तुम्हें मेरे अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया था और अगर पिताजी को ये पता चल गया कि उनकी बेटी का अंगरक्षक ही उनकी बेटी का अंग अंग चूमने वाला है तो फिर क्या होगा?